के रीजन है। इसलिए हमारा परम गुरु जी कोशिश किया, तुम्हारा काम करो, लोभ मोह है ठीक है, इसको दबाने के लिए तुम कोशिश करोगे सारा जिंदगी चला जाएगा, हजारों जिंदगी जरूरत नहीं, जो है तुम आ जाओ, तुम्हारा जो श्रद्धा है आ जाओ, हमारा यहाँ पर रहो, हरिकथा श्रवण कीर्तन करो, हरिभक्ति अनुशीलन करो, सदाचार में रहो, जब जरा से वही कृष्ण प्रेम का बू भी मिल जाएगा सारा संसार नाश। हमारा प्रभुपाद की ऐसा इच्छा थी, जब वो घर में रह के कोई और स्थान पर रह के त्यागी होकर इंद्र को दबा भी दे तब भी खतरा है, ये प्राकृत इंद्र का कारण चिन्मय इंद्रिय है, चिन्द्र इंद्र का विषय अप्राकृत मदन मोहन है, जब तक अप्राकृत मदन मोहन का आस्वादन नहीं होगा तब तक डर रहेगा। इसलिए आप लोग गीता जी का भक्तों चक्र के व्याख्या उसको अच्छी तरह से देख लीजिए, विषा विनिबंध निराहार सदैन रहवर्जन सप्रश्न परम दृष्ट निबंध देख लीजिए, महामूर्ख है जो समझते इंद्र को दबा के हम उसको अपना हिम्मत से दबा सकता है, नहीं, जब तक श्रेष्ठ रस नहीं मिले नहीं दबा सकते, ये बात अच्छी तरह से वहां पर भक्त मिनट को बता दिया। इसलिए वाक्य वेग मनोवेग क्रोध वेग काम रहने से क्रोध होगा, असंकल्प जयत काम क्रोध काम विवर्जना कामत क्रोध भी जाए, वाच वेगम मनस क्रोध वेगम जीभा वेगम, अच्छे से चीज खा लिया जीभा वेग जब हो जाएगा इंद्रिय वेग होगा, उपस्थ वेग भी आ जाएगा, जीभा वेग का सब संबंध है, जो जीभा वेग को जय किया वो सारा इंद्र को जय किया, उधर उपस्थ वेगम एतन वेगम जो विशेष धीर धर्मावली सर्वाग्निंग शिक्षा उपस्थित एक सबको जब दमन कर सके वो सारा दुनिया को शासन कर सकता है, इसका जो व्याख्या किया है हमारा प्रभुपाद भक्ति विनोद ठाकुर उपदेशामृत में पढ़ के लीजिए, यहाँ पर कहने के लिए समय नहीं है, हम लोग कार्तिक व्रत में इसका विस्तृत रूप से आलोचना करते हैं, एक एक बात एक एक बात जो बात बोला ना, पहले फाउंडेशन ही नहीं आए पहले हम प्रेम की बात कहते क्या समझेंगे, इसलिए तथा कोई सहोदिया जो है वो लोग उपदेशामृत का जम का मार भी डरते हैं, जम आए पहले डंडा मार दिया, जब शुद्ध भक्त का संग हो जाए तो मेरा अंदर भी यही ज्ञान होगा मैं कृष्ण का हूं, न तो जगवंदाजन प्रिय तो पाया दीवी यथा कृष्ण अपित प्राण सत्पुरुष नीचे पाया ष्ठ स्कंद में प्रायश्चित प्रसंग में बोला, कर्मकांड ज्ञानकांड प्रायश्चित भक्ति प्रायश्चित में जो किया वहां पर बोला, हे परीक्षित महाराज पापिष्ठ व्यक्ति तद्र पवित्र नहीं हो सकता है कर्मकांड ज्ञानकांड प्रायश्चित द्वारा तपस्या ब्रह्मचर्य द्वारा, जैसा होता है कृष्ण में अर्पित होने से, कृष्णापित प्राण तो कथम सत तत्पुरुष निषेवाया, भगवान का नियोजन शरणागत भक्त का परिचर्य द्वारा मैं कृष्ण का हूं एक ज्ञान आएगा, जब कृष्ण का माए हो जाऊंगा तो कृष्ण के लिए जो कुछ करूंगा वो भक्ति है, मैं दुनिया का हूं जो कुछ भक्ति करूंगा उसका फल दुनिया में आ जाए, यही बात तो वहां पर सुपर शिक्षा में आए तो समय उपसंहार करो ये छेदन से भूल सके बारी जाए वृंदावन, बहुत किस्म का अवान्तर मतलब आ जाते ना, गुरु जी का पास तो मंत्र लेने का पास बोल देते हम भक्ति के लिए मंत्र ले रहा है, लेकिन बाद में पहले का संस्कार से बहुत कुछ आ जाता है, भक्ति मुक्ति वंचा असंख्य तार लेखा जाकुटी नदी जीव हंस रिश्ता आदि वहां पर लाभ पूजा प्रतिष्ठा सब आ जाते, एकदम विश्लेषण करके प्रभुपाद लिखा दिया वहां पर, वही मुझे ही करने होगा जो साधक है उनको ही बीज को रोपण करने पर का श्रद्धा युक्त हृदय में और उनको ही पानी देने पर का श्रवण कीर्तन जल और उनको ही पेड़ को घेराव करने पड़ेगा, जिसे पगला हाथी वैष्णव अपराध नहीं हो जाए और अवान्तर मतलब नहीं आ जाए और उनको ही उसको काटने पड़ेगा, धान गाछ के पास और धान पेड़ के बाद और पेड़ निकालता नहीं उसका क्या बोलता है, उसको नहीं काटने से धान को रस नहीं मिलता है, इसलिए प्रथम ही उपसंहार करे छेदन मूल सके बारे जाए वृंदावन। इसलिए जो उपदेशामृत में रूप गोष्ठ में शिक्षा दिया आखिरी में हर एक श्लोक का बारे में चिंता की, एक एक अत्याहार प्रयास से प्रजल को नियम आग्रह जरा संघर्ष लोलन से शब्द भक्ति विनष्ट एकदम एक एक श्लोक चिंता करिए तो आखिर में हो ही प्रेम मिलेगा। और आखिर में भी बोल दिया कर्मी पर तो हर एक पर व्यक्ति जो दुर्ज्ञानी रहा तेव्य ज्ञान मुग्ध भक्ति परवाह प्रेम निष्ठ ततः तेव्य स पशुपल भंग विशारादि का प्रेषा तदाश्रय कृषि। कर्मी से ज्ञानी, ज्ञानी से जो नारायण का भक्त है चतुष्ण ज्ञान छोड़ दिया उससे नारदादी उससे और जो शक्कर का भक्त मत्स्य का भक्त वो बीच में बोला नहीं। फिर जो काम तरती है उसका अंदर में गोपी का अंदर में राधा रानी है उसका अभिन्न राधा कुंड बतला दिया जो चीज है
वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदाय कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरस्थिते श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति आर्द्रानस्तेन दन्तैरीतं जाते किमदरूपदं यां जन्म मैं सबसे पहले अपने गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट हूँ विष्णुपाद कृष्ण भक्ति सदन के स्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में सत्सत बार वंदना का तत्पश्चात पूज्य पाद कृष्ण भक्ति वल्लभ कृष्ण महाराज जी वैष्णव बनी सज्जन मंडली वैष्णव आज तीन चार दिनों से स्वरूप गोस्वामी की शिक्षा के संबंध में यहाँ पर गोष्ठी संगोष्ठी चल रही बहुत से बड़े बड़े विद्वान उनके अपराधिक चरित्र के संबंध में बोले हैं बहुत ही सुंदर सुंदर उनके लिए समय करीब करीब तब समाप्त हो चुका है अभी भोग भी लग चुका है वैष्णव के सेवा में विलंब हो जाएगा और हम लोग तो रोज ही बोलते हैं। मैं केवल दो एक बातें आप लोगों के सामने बतला वक्तव्य समाप्त करूंगा अभी इसके बाद ही में आती होगी फिर प्रसाद के बाद। अभी महाराज जी ने स्वरूप गोस्वामी के उपदेशों के संबंध में कुछ बतलाया विशेष करके उपदेशामृत का प्रथम द्वितीय तृतीय इत्यादि श्लोकों के संबंध में भी उन्होंने स्पष्ट किया। वास्तविक में रूप गोस्वामी के ये सब श्लोक ये सब उपदेश भक्ति राज्य के सुदृढ़ नींव है या प्लेटफॉर्म। इन्होंने ये भी बतलाया जैसे भक्ति विनोद ठाकुर जी ने प्रभुपाद ने बतलाया ये उपदेश गृहस्थों के लिए हैं। क्यों गृहस्थों के लिए हैं? क्योंकि गृहस्थ जीवन में ही ये सारे उपदेश पालन कर और तब फिर विरक्त होकर के नवदीप धाम में, वृंदावन धाम में अथवा कृष्ण की लीला स्थलियों में वो भजन करेंगे। इसलिए उनमें तो पराकाष्ठा रूप से ये सभी चीजें होनी चाहिए, इसलिए उन लोगों के लिए नहीं, गृहस्थों के लिए ही अपने जीवन में अच्छी तरह से पालन करेंगे और इसमें प्रतिष्ठित होने के बाद में सब त्यागमय निश्चिंचन जीवन वो व्यतीत करते हुए भगवान का भजन करेंगे। इसलिए उन लोगों के लिए ये सब के पालन करना जरूरी, किंतु एक बात और है, इस जगत में तरह तरह के साधक हैं। कुछ साधक ऐसे हैं जिनकी अभी सुकृति नहीं हो रही हो, पूर्व जन्म की का संस्कार भजन का नहीं, नए रूप में उनके संस्कार हो रहे हैं या थोड़ी सी पूर्व जन्म की सुकृति हो और इस जन्म में आए हैं भजन कर रहे हैं आरंभ किया, उनके लिए तो ये सब अक्षर सा पालन करने योग्य हैं। किंतु जिन लोगों का पूर्व जन्म का भक्ति का संस्कार है और भजन करते 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 श्रद्धा अनर्थ दूरीकरण हो गया, इसके बाद में भजन में निष्ठा हुई, प्रगाढ़ निष्ठा होने के बाद में, परिपक्व निष्ठा होने के बाद में उसकी रुचि हुई और रुचि भी वैशिष्ट अनापेक्षणी और वैशिष्ट वस्तु वैशिष्ट अपेक्षणी और वस्तु वैशिष्ट अनपेक्षणी, इन अवस्थाओं को पार कर जिसकी रुचि प्रगाढ़ रूप से भगवान के भजन के प्रति सुदृढ़ हो चुकी है और वही परिपक्व होने पर भजन से भजनीय के प्रति हो गई, यहाँ तक पहुँच गया है और इनका पालन कर चुका है, ऐसे भी तो भक्त लोग हो सकते हैं। जगत तो खाली शून्य तो रहेगा नहीं, हो सकता है जो उत्तम अधिकारी भी भक्त हों, जैसे श्रील प्रभुपाद जी आए, प्रभुपाद जी के परिकर लोग आए, इसलिए हम लोगों को ये सब पालन करना चाहिए। किंतु जीवन में हम लोगों को भजन का उद्देश्य क्या है, कृष्ण के साथ में हमारा क्या संबंध है, ये निर्णय होना चाहिए। जब तक हम लोगों का भजन का उद्देश्य क्या है, एम एन ऑब्जेक्ट ऑफ द भजन क्या हमारा है, स्थिर नहीं हो गया, क्या भजन करेगा कोई, संबंध ज्ञानी नहीं हुआ। इसलिए हम लोगों को एक अनिष्ट शब्द ब्रह्म में निष्ठा और भजन में परिपक्व भगवत उपलब्धि युक्त संसार से निवृत्त अनासक्त महात्मा हों, विशेष करके बतलाए हैं जी गोस्वामी जी ने, जिनको रति उत्पन्न हो गई है, ऐसे लोग शुद्ध गुरु हैं, इनके आश्रय में यदि भजन किया जाए तो हम लोग भजन में उन्नत हो सकते। आजकल देखते हैं हम लोग चेला तो मिलते हैं, शिष्य मिलते हैं, किंतु गुरु ऐसे लक्षण से युक्त मिलना बड़ा भारी कठिन होता है। कुछ दिन में बाद में गुरु च्युत हो जाते हैं और शिष्य का सारा जीवन चौपट हो जाता है। इसलिए रूप गोस्वामी के इन प्रारंभिक उपदेशों का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। तत्पश्चात संक्षेप में यही कहना चाहते हैं, सभी लोग रूपानु क्यों कहना चाहते हैं, अपने गुरु को रूपानु क्यों कहते हैं, रूपानु गुरु वर्ग की जय। आकांक्षा तो होगी जानने की, लालसा तो एक तो होनी ही है, रूपानुग क्या है, रागानुगा कौन क्या है। अंततः भजन करते करते कुछ दिनों के बाद में आदमी मध्यम अधिकार में तो आएगा, कभी अति सब समय कनिष्ठ अधिकारी में ही रहेगा। हमने सुना है श्रील प्रभुपाद जी कहते थे, मैंने किसी को गुरु शिष्य नहीं बनाया, मैं किसी को शिष्य नहीं करता, मैं गुरु बनाता हूँ, और सबको प्रणाम करते थे। आप लोग हमको कृष्ण भजन की उत्सुकता और प्रेरणा देते हैं, आपके देखने से हमको कृष्ण कथा कहने की लालसा होती है, उनको प्रणाम करते हैं। जिज्ञासा होनी चाहिए, क्या रूपानु क्या है, अर्थात हमारे भजन का क्या लक्ष्य है, रूप गोस्वामी का चरित्र कैसा है, कैसे भजन करते थे, हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी जी, जीव गोस्वामी जी कैसे भजन करते थे, उस भजन को हम प्रणाम करते हैं, किंतु थोड़ा सी थोड़ी थोड़ी लालसा जगती जाएगी, यही लालसा भक्ति राज्य का मूल चीज है। इसलिए भक्ति दो प्रकार की, एक शास्त्र शासनमयी और दूसरी होती है हरि कथा इत्यादि श्रवण करके लोभमयी होती है। लोभमयी जगत में बहुत दुर्लभ रेयर है, तो भी भजन करते 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 एक थोड़ी सी जरूर लालसा होगी वैष्णव की कथाओं को सुन करके, कैसे कृष्ण की सेवा की जाए। कल जैसे चर्चा चल रही थी उसमें लोगों ने बताया, जैसे हमारे गुरु जी कहते थे, मैं कृष्ण को नहीं जानता, मैं राधा जी को नहीं जानता, मैं चैतन्य महाप्रभु को भी नहीं जानता है। ये लोग हमारे सिर पर रहे, हमारे गुरु जी ने इस पाषंडी को चोटी पकड़ करके विश्व से ये नरक से उठार करके, मैं उनको जानता हूं, उनके माध्यम से सबको मैं पहचानूंगा, ऐसा अनुगत्य होना चाहिए। इसलिए रूप गोस्वामी जी की विरह तिथि कल थी, उनके चरणों में हम निवेदन करते हैं कि हम लोगों का किसी दिन सौभाग्य हो जो हमारे मन में ये लालसा जगे। रूपानु किसको कहते हैं, राग किसको कहते हैं, किस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु क्या देने के लिए आए थे, चैतन्य महाप्रभु का जो अनर्पित चरण की रात, इसका क्या तात्पर्य हमारे हृदय में कब स्फूर्ति प्राप्त होगी। हे गोस्वामी जी, आप चैतन्य महाप्रभु के मनोभिष्ट को पूर्ण करने वाले हैं। यहां तक कि सनातन गोस्वामी जी ने उनको गुरु के रूप में प्रणाम किया है, क्यों, क्या कारण था। इसलिए जिस समय की सनातन गोस्वामी बंदी सात वहां पर थे मालदा जिले में रामकेली ग्राम में, और उस समय में रूप गोस्वामी ने एक पत्र दिया, स्वागता मथुरापुरी, मथुरापुरी आज कहाँ चली गई, अयोध्या कहाँ चले गए, कहाँ गई ओ कौशला कौशलापुरी, और रामचंद्र और ये सब लोग कहाँ चले गए, पांडव लोग कहाँ चले गए। और उसमें भी सूत्र में लिखा क र इत्यादि लिख दिया चिट्ठी में और लेकर के दे दिया, कोई नहीं इसका अर्थ समझा। सनातन गोस्वामी जी ने पत्र को खोला और दे करके सारी, ये तो हमको वैराग्य की शिक्षा दे रहे हैं। इसे सुनते ही बस झट संकल्प कर लिया, आज अब राजा की नौकरी नहीं करनी है उस जैन बादशाह का, और झट वैराग्य प्राप्त करते उससे। यद्यपि नित्य सिद्ध परिकर हैं, तभी हमारी शिक्षा के लिए वो ऐसा दिखलाते हैं। इसलिए उसी समय से राज्य का छोड़ दिया, बादशाह नाराज होकर के उनको जेल में बंद कर दिया, और कैसे छूट करके आए, रूप गोस्वामी की बहुत सहायता से उन आए। उन्होंने कितनी लाख मुद्राएं सोने की जेलर के सामने रख दिया, यदि रूप गोस्वामी ऐसी व्यवस्था नहीं किए होते तो जाने सनातन गोस्वामी को कितने दिन तक जेल में रहना होता, क्या होता। दूसरी बात, पुरी में जबकि नंदी श्लोक पढ़ रहे थे, यहाँ पर किस स्वरूप दामोदर राय रामानंद सार्वभौम भट्टाचार्य जैसे दिग्गज विद्वान लोग थे, और नंदी मुखी कोई विदग्ध माधव या ललित माधव का पढ़ रहे थे, कौन ग्रंथ लिख रहे हो, स्वरूप दामोदर जी ने पूछा। उस समय में नर्क चरिण की रात जब श्लोक उच्चारण किया, सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। महाप्रभु जी ने कहा, अरे ये बहुत सुंदर तो लिखा है, किंतु इसमें थोड़ा सा बीच क्यों लगा दिया। स्वरूप दामोदर जी कहा, ये बीच नहीं, ये तो इसमें घने दूध में और जोड़ दिया, न जाने क्या करतूत जोड़ दिया, ये बहुत सुंदर है। सनातन गोस्वामी जी सब सुने, जब कौम आर हरम इत्यादि का तात्पर्य जब प्रियम सोम सहचरी इत्यादि जब उन्होंने सुना, गदगद हो गए। ठीक है, महाप्रभु जी की ये सब भावनाओं को कैसे ये धारण कर लेता है। स्वरूप दामोदर जी इत्यादि जी ने कहा, आपकी कृपा नहीं होने से कोई नहीं समझ सकता। यद्यपि स्वरूप दामोदर राय रामानंद कैसे लोग ललिता पिशाचा जी के कही जाती हैं और बड़े सब लोग थे, किंतु महाप्रभु जी ने इनको ही क्यों वर्ण किया और ये श्लोक क्यों आया। चैतन्य मनोभीष्टम इत्यादि अथवा जो कवि कर्णपुर जी ने लिखा, ये सब श्लोक किसलिए लिखा। सचमुच में महाप्रभु जी के सारे भावों को रूप गोस्वामी ही जानते थे, इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु के जो परिकर नित्य परिकर ये जो रूप गोस्वामी हैं, उनके स्वरूप हैं, प्रेम के स्वरूप है, एक तान है, ऐसे जो रूप गोस्वामी हैं उनके चरणों में आज हम भिक्षा मांगते हैं, वो हम सब पर कृपा करें। ये उनके इन चीजों को कभी किसी जन्म में समझकर अनुभव करके उनके चरणों का अनुगामी हो सके, हम उनकी चरण की किंकरी उनकी चरण धूली को अपने हृदय में धारण कर सके, यही वंदना करके मैं आज वक्तव्य समाप्त करता हूँ। अभी आरती होगी, आरती के पश्चात में
कृपा सिंधुभ्येव पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महाबदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नम्ने गौरस्तुते नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै सदाहि कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तदभक्ताय नमो। भक्त्या विहीना पराध लक्ष्ये चित्तस्य कामादि तरंग मध्ये कृतामयीं त्वां शरणं प्रपन्ना विन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति सपदं। भजामि राधामरविन्दनेत्रं स्मरामि राधाम् अनुसृतास्यं भजामि राधाम् करुणाभरद्रं ततो मम नास्ति जपि कापि। हम लोग यहाँ एकाशी से ही तिलरूप गोस्वामी के तिलरूप गोस्वामी के संबंध में बतला रहे हैं। रूप गोस्वामी की इच्छाएं क्या हैं, उनका जीवन चरित्र कैसा है, किस रूप में हम लोग भजन करके ब्रज भक्ति को पा सकते हैं, इसके संबंध में हम लोग बोल रहे हैं। अभी मैं पीछे बोलूँगा, पहले नवीन कृष्ण जी लो अब पाँच दस मिनट हो, अधिक नहीं, पाँच मिनट रूप गोस्वामी के संबंध में श्रवण किया। कल परसों से ही भक्ता लोग उनके विभिन्न प्रकार के परिस्थितियों पर बोल रहे हैं। रूप गोस्वामी का जीवन ही उनकी शिक्षा है। एक एक विषय पर हम लोग विचार करेंगे तो देखेंगे। साधारण साधारण बातों में भी देखते हैं। रूप गोस्वामी जी राधा दामोदर मंदिर में, उस समय राधा दामोदर मंदिर में का सेवा कुंजरी भजन कुटी में बैठे हैं और कुछ लिख रहे हैं। एक छोटा सा बच्चा उनकी सेवा में है, वो कौन है? जी गोस्वामी वल्लभाचार्य जी घूमते घूमते आ रहे हैं। कजे रूप जी आप क्या लिख रहे हैं? इनसे पहले से ही उनका परिचय है कि चैतन्य महाप्रभु के साथ में अड़ाल ग्राम में ये गए थे, उस समय से ये जानते हैं। वल्लभाचार्य जी महाप्रभु जी से भी उम्र में बड़े हैं जागतिक दृष्टि से, इसलिए रूप गोस्वामी के प्रति कुछ स्नेह रखते हैं। उन्होंने कहा जी ये ग्रंथ लिख रहा हूँ, ठीक है जब हो जाएगा तो हमको दे देना संशोधन के लिए। अरे बहुत अच्छी, ये नहीं देखा कि मैं कोई भूल नहीं कर सकता, ये नहीं कहा, उनको यथा योग्य सम्मान देकर के विदाई किया। किंतु जो छोटा सा बच्चा है वो कैसा है? हमारे संप्रदाय का गौरव है जी गोस्वामी, घड़ा ले लिया और उनके पीछे पीछे चल पड़े यमुना में। वो गए तर्पण करने के लिए, उनके पीछे पीछे घड़ा लेकर के पहुंचा और कैसे कहा जी तुम वहीं पर बैठे थे ना, कहाँ बैठा था तो आपने उनकी मैं भूल क्या देखा? तो उन्होंने कुछ प्रश्न इत्यादि किए और उसका समुचित उत्तर दिया और वहीं पर तर्क वितर्क होने लगा। बल्कि यही प्रश्न पूछा कि भक्ति मुक्ति स्पृहा जाऊती साची रिवर्स। उन्होंने कहा जैसे ये पिशाची उन्होंने क्यों लिख दिया? मुक्ति पिशाची नहीं बल्कि मुक्ति की इच्छा रूप जीव गोस्वामी ने कहा। मुक्ति पिशाची नहीं है किंतु मुक्ति की इच्छा के लिए भक्ति का प्रत्याग करना और वो निकल जाती है पिशाची, इसलिए तर्क वितर्क में जीव गोस्वामी ने उन्हें परास्त कर दिया और वो लौट करके आकर के क्षमा मांगा। तो ये फिर चले जब गए तो जी गोस्वामी को बुलाया, तुमने क्या किया? एक वैष्णव एक ब्राह्मण उसको सम्मान देना उचित है ना, तुमने सम्मान नहीं दिया। जी गोस्वामी ने कोई भी उत्तर नहीं दिया। यहाँ पर दो विचार, शिष्य का कर्तव्य वही है कि गुरु के प्रति यदि कोई अपशब्द बोले या उनके विचारों का खंडन करे तो सत शिष्य उसका उचित खंडन कर गुरु के विचारों की प्रतिष्ठा करे। इधर में रूप गोस्वामी ये देख रहे हैं कि ऋणादपि सुनिश्चित होना चाहिए, अपने शिष्य का शासन किया, शिष्य के तरफ से भी ठीक है और गुरु के तरफ से वही ठीक है। जी गोस्वामी का कोई दोष नहीं किंतु रूप गोस्वामी जी शिक्षा दे रहे हैं साधारण साधारण बातों में। कोई भजन कर रहे हैं और कोई खंजर कृष्णदास जी आए, रूप गोस्वामी में समाधि में भजन करते करते कृष्ण लीला का चिंतन करते करते देखा कृष्ण की अटपटी लीलाओं को और वो हंसने लगे और उन्होंने सोचा जी हमको लंगड़ा देख करके ये रूप गोस्वामी भी हमसे दिल्लगी करते हैं और हंसते हैं। उन्होंने मन ही मन में कुछ सोचा जी हमारे प्रति ऐसी इनकी धारणा, बस वहाँ से लौट गए और कुछ असंतुष्ट हो। रूप गोस्वामी ने कुछ दिखलाया मानो हमने कुछ अपराध कर दिया, इसलिए भगवान का लीला चिंतन नहीं हो रहा। उन्होंने सनातन गोस्वामी से कहा हमारा भजन में मन नहीं लग रहा है, तो क्यों कुछ गड़बड़ हो गई? कहाँ गड़बड़ हुई? अच्छा जी गोस्वामी कहा जी सब वैष्णव को निमंत्रण दे आओ। सब वैष्णव लोगों ने निमंत्रण ग्रहण किया, किंतु खंज जो कृष्णदास थे नहीं ग्रहण किया। मैं कहा जी मैं नहीं जाता, हमारी दिल्लगी उड़ाते हैं, मैं लगना हो गया तो क्या हुआ, मैं भजन नहीं करता। हमको देखकर के हंसी उड़ाई उन्होंने। सनातन गोस्वामी जी सुन करके बोले चलो वहीं पर चलना है, वहीं पर अपराध कुछ हुआ है। जाकर के रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी को देखा, हाथ जोड़े हुए देख करके बस हृदय उनका द्रवित हो गया, उनके चरणों में गिर गए। रूप गोस्वामी ने कहा जी मैंने हंस दिया था शायद,